जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णु पाद परमहंस प्रियराजकाचार्य अष्टोदश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, जय ओम विष्णु पाद परमहंस प्रियराजकाचार्य अष्टोदश डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन मथुरा धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया यमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी महारान की, सामवेद गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक क्रमांक 61। शयानम इमम उत्सृज्य श्वसंतम पुरुषो यथा कर्मात्मनि आहितं भुङ्क्ते तादृशेन इतरेण वा शयानम् इमम् उत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मनि आहितं भुङ्क्ते तादृशेन इतरेण वा शयानम् इमम् उत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मनि आहितं भुङ्क्ते तादृशेन इतरेण वा। शयानम् इम उत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मनि आहितं भुङ्क्ते तादृशेन इतरेण वा। शयानम् इमम् उत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा मनियाहितं भुङ्क्ते तादृशेन इतरेण वा। शयानम् इमम् उत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मनि आहितं भुङ्क्ते तादृशेन इतरेण वा। माताजि, शयानम् इमम् उत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मनि आहितं भुङ्क्ते तादृशेन इतरेण वा। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। शयानम बिस्तर में लेटे हुए, इमम यह शरीर, उत्सृज्य त्याग कर, श्वसंतम श्वास लेता हुआ, पुरुषः जीव, यथा जिस प्रकार, कर्म कार्य, आत्मनि मन में, आहितम संपन्न हुआ, भुङ्क्ते भोगता है, तादृशेन वैसे ही शरीर से, इतरेण भिन्न शरीर से, वा अथवा। भाषांतर तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की भाषांतर। स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों से वह दूसरे शरीर में यथा देवता या कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है। इस स्थूल शरीर को त्याग कर जीव इस लोक में अथवा अन्य लोक में किसी पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार वह अपने पिछले जीवन के कर्म फलों को भोगता है। तात्पर्य, यद्यपि मन बुद्धि तथा अहंकार सुख तथा दुख के मूल कारण है, तो भी भोगने के लिए निमित्त कारण स्वरूप स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ती है। स्थूल शरीर भले बदलता रहे किंतु सूक्ष्म शरीर सक्रिय बना रहता है। जब तक जीव को अन्य स्थूल शरीर नहीं प्राप्त हो जाता वह सूक्ष्म शरीर या भूत प्रेत के शरीर में बना रहता है। स्थूल शरीर के बिना ही जब सूक्ष्म शरीर कार्य करता है तब जीव भूत प्रेत बन जाता है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शयानाम इम उत्सृज्य श्वसंतम। स्थूल शरीर बिस्तर पर लेटकर आराम कर सकता है और स्थूल शरीर रूपी यंत्र के कार्य करते रहने पर भी जीव स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में चला जाता है और फिर उसी में लौट आ जाता है। जब वह शरीर में लौट आता है तो स्वप्न को भूल जाता है। इसी प्रकार जब जीव अन्य स्थूल शरीर धारण करता है तो वह अपने वर्तमान स्थूल शरीर को भूल जाता है। निष्कर्ष यही है कि मन बुद्धि तथा अहंकार से निश्चित सूक्ष्म शरीर आकांक्षाओं का वातावरण उत्पन्न कर देता है जिससे जीव सूक्ष्म शरीर में ही भोगता है। वास्तव में जीव तो सूक्ष्म शरीर में ही रहता है, भले ही स्थूल शरीर बदलता रहे और जीव विभिन्न लोकों में शरीरों में निवास करे। सूक्ष्म शरीर में जीव द्वारा उत्पन्न सारे कार्य मोहपूर्ण कहलाते हैं क्योंकि वे स्थायी नहीं होते। मोक्ष का अर्थ है सूक्ष्म देह के चंगुल से बाहर निकलना, जबकि स्थूल शरीर से मोक्ष का अर्थ है एक स्थूल शरीर से दूसरे में आत्मा का देहांतरण। जब मन को कृष्ण चेतना की शिक्षा मिलती है तो मनुष्य या तो स्वर्गलोक या वैकुंठ लोक को जाता है। अतः मनुष्य को शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त वैदिक आदेशों से प्राप्त ज्ञान के अनुशीलन से अपनी चेतना बदलनी होती है। यदि हम इस जीवन में सूक्ष्म शरीर को कृष्ण विषयक चिंतन का प्रशिक्षण देते हैं तो इस स्थूल शरीर को छोड़ने पर हम कृष्ण लोक को जाएंगे। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने की है भगवद्गीता 4:9 का श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात इस संसार में जन्म नहीं लेता बल्कि मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थूल शरीर का परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि सूक्ष्म शरीर का है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों में सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करने की शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रसंग में आदर्श उदाहरण अम्बरीश महाराज का है जिन्होंने अपने मन को सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाए रखा। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोः। इसी प्रकार इस जीवन में हम अर्चा विग्रह रूप में उपस्थित श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को निरंतर स्थिर रखना चाहिए। हमें उनकी पूजा भी करनी चाहिए। यदि हम अपनी वाणी को भगवान के गुणगान में और कानों को उनकी लीलाओं के श्रवण करने में लगाएं और यम नियमों के द्वारा मन को कृष्ण चेतना अग्रेसर करने के लिए अक्षत रखें तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकेंगे। तब मृत्यु के समय मन बुद्धि तथा अहंकार भौतिक रूप में दूषित नहीं होंगे। जीव के साथ मन बुद्धि तथा अहंकार भी उपस्थित है। जब मन बुद्धि तथा अहंकार शुद्ध हो जाते हैं तो जीव की सारी कर्मेंद्रियां आध्यात्मिक बन जाती है। इस तरह जीव सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर तो सदैव सच्चिदानंद रूप है किंतु जीव भगवान का अंश होकर भी सुख उपभोग की इच्छा से इस संसार में आकर भौतिक रूप में दूषित हो जाता है। भगवान ने स्वयं भगवद्गीता 9:34 के श्लोक में अपने धाम लौटने का नुस्खा बताया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामय वैशेषी युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायणः। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस तरह मुझी में पूर्ण रूप से मग्न रहने पर तुम मेरे पास आ सकोगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवों से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि आज मैं जो भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर वो परंपरा में हो और भक्तों के प्रसन्नता के लिए और उसके साथ ही गुरु परंपरा और भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ जो है हम कुछ बोल पाए। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय क्रमांक स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक क्रमांक 61 नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप। शयानाम इम उत्सृज्य श्वसंतम पुरुष यथा कर्मात्मनम आहितम भुंक्ते तादृशेन इतरेन वा। तो यहाँ पे प्रभुपाद भाषांतर में बोलते हैं कि स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है, मतलब स्वप्न में, और मन तथा बुद्धि के कार्यों से वह दूसरे शरीर में जाता है। एक्चुअली उसका अर्थ है, लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं, यथा देवता या कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है ना। तो इंग्लिश में प्रभुपाद बोलते हैं डॉग और गॉड, मतलब ऐसे लिखा है। तो हिंदी में तो प्रभुपाद बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से स्थूल शरीर व्यक्ति बदल देता है, किसके कारण, सूक्ष्म शरीर के कारण, है ना। तो आज हम इस श्रीमद् भागवतम जो पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ सकते कि जो स्कंद पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में पांचवें नंबर का श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। मुनयः साधु पृष्टोऽयं भवद्भिर्लोकमंगलं यत्कृतः कृष्ण संपर्णो येनात्मासु प्रसीदति। तो प्रभुपाद बहुत सुंदरता से लिखते हैं तात्पर्य में, भाषांतर तो बहुत सुंदर ही है कि वो सुध गोस्वामी बता रहे सारे ऋषि मुनियों को कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है ना, इतना अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन ये प्रश्न क्यों अच्छा है उसका कारण बताते हैं, क्योंकि ये क्या है, कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण संप्रश्नो। आपने ये सुंदर प्रश्न पूछा है, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन ये प्रश्न किससे संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है। अभी उससे क्या होगा, ये आपको तो उसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ क्या हो जाएगा, भवद्भिर् लोक मंगलम, मतलब इस जीवन में जो बाकी के जो सारे जनसामान्य है उनके मंगल के लिए भी ये प्रश्नों का उत्तर बहुत लाभदायक होगा। और इससे क्या होगा, एनात्मा सुप्रसिद्धति, और ये उत्तर सुनने से या उत्तर देने से भी क्या होता है, वो जो आत्मा है वो क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, सुप्रसिद्धति। तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में दूसरे पैराग्राफ में बहुत सुंदर लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ही क्या है, हमारे स्वामी है, मतलब बहुत पास वाले मित्र है, पिता पुत्र है, या फिर जो हमारे मधुर प्रेमी है, प्रभुपाद बताते हैं। और यही हमारा कृष्ण है। लेकिन जैसे हम श्री कृष्ण को भूल जाते हैं उसी वक्त सभी समस्याएं चालू होती है। तो प्रश्न पूछना ये सामान्य है, प्रश्न तो पूछे जाएंगे ही, लेकिन प्रश्न किस चीज के बारे में पूछना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही होता है श्रीमद् भागवतम में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राचीन भर ही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से उनको ये समझना है कि यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है। जैसे कि पहले वो राजा पुरंजन, उनका उपाख्यान होता है, तो उनका उपाख्यान वो समझ नहीं पा रहे, वो और पूछ रहे किस तरह से समझ सकते हैं। तो उसके उत्तर में नारद मुनि बहुत सुंदरता से बता रहे हैं कि किस तरह से ये सूक्ष्म शरीर के कारण जो है शरीर बदलना पड़ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। और तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिया है, समझने के लिए बहुत मतलब इतना नहीं, थोड़ा भी मुश्किल नहीं है ना। तो एक बार ऐसे ही भगवद गीता श्रीमद् भागवतम कक्षा हो रहा था और जयद्वैत महाराज कथा कर रहे थे, तो उन्होंने श्लोक पढ़ा, भाषांतर पढ़े और तात्पर्य पढ़ा, और तात्पर्य पढ़ने के बाद थैंक यू वेरी मच बोला, कक्षा खत्म। बोले प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदरता से बताया कि उसके आगे इतना मुश्किल नहीं है, एक छोटे से बच्चा भी उसको समझ सकता है। मतलब ये श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, है ना, कि उन्होंने ये श्लोक समझाने के लिए कितने मतलब उन्होंने कष्ट लिया है ना। प्रभुपाद जी ने रात रात जगकर, मतलब बहुत कम सोते थे और बोलते थे कि मुझे इन ग्रंथों का पूरा करना है, उनका भाषांतर और उसका वितरण करना है, लेकिन उसी के साथ क्या करना है, ये सब भक्तों के लिए, तो ये जो हमारे लिए दिया हुआ है श्रील प्रभुपाद जी ने, तो बहुत आसान है समझने के लिए। हाँ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजे त्यंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है ये, तो सबको ही पता होगा और इस श्लोक का भाषांतर पता होगा, है ना, ये है भगवद गीता। लेकिन क्या हम इसका सच में हमारे जीवन में अनुभव कर रहे कि नहीं, ये समझना बहुत जरूरी। तो प्रभुपाद बहुत स्टेप वाइज, मतलब ऐसे एक के बाद स्पष्ट करते जा रहे किस तरह से जो क्या है, एक सूक्ष्म शरीर के कारण व्यक्ति क्या कर रहा है, इस जीवन में दुख का भोग रहा है। आप कभी भी जब बाहर सुनेंगे या फिर हम जब भी चर्चा करते हैं तो हमारे जीवन में हम इतना ही सुनते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रश्न है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों नहीं सुन रहा है, वो क्यों ऐसा चल रहा है। इसका कारण क्या है कि हमारे जो भी सारे प्रश्न है किससे संबंधित है, हमारे संबंधित है, स्वार्थ से प्रेरित है। तो इसी के लिए व्यक्ति हमेशा दुख का ही अनुभव करेगा बस। लेकिन उसी समय जब अगर वो भगवान के कथा में लगता है, भगवान के बारे में श्रवण करता है, उनके भक्तों के बारे में सुनना चाहता है, उसी वक्त वो सारे प्रश्न शून्य हो जाते हैं। ये किस तरह से होता है, अभी यही है कि क्या होता है, एनात्मा सुप्रसिद्धति। इसी के लिए जब भी बोला है कि जीवन में कुछ समस्या आ रही है तो हमारे भक्त बोलते हैं कि क्या कीजिए, जब अच्छा चल रहा है कि नहीं, जीवन में भक्ति बराबर चल रहा है कि नहीं। क्योंकि क्या है, जब हमारे हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य प्रकट होते तभी अंधकार उसी क्षण नष्ट हो जाता है, वो नष्ट करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण के क्या करना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन नाम रूप गुण लीला इसमें लगे रहना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा समस्या सबको क्या लगता है कि हमारे शरीर में ये चल रहा है, वो चल रहा है, उस चल रहा है, लेकिन प्रभुपाद बता रहे स्थूल शरीर तो बदलता रहेगा, क्योंकि क्या है, सूक्ष्म शरीर में क्या हो रहा है, इच्छाएं हैं। सूक्ष्म शरीर में आते हैं क्या है, मन बुद्धि अहंकार, है ना। अभी मन बुद्धि अहंकार
लगता है हाँ मन मन के बारे में पता है, भगवद गीता तो बोलते हैं मन के बारे में, उद्धरेत आत्मा आत्मानम, या फिर बुद्धि के बारे में बताएंगे किस तरह से बुद्धि लगाना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, अहंकार, हाँ अहंकार से दूर जाना है, इसी के लिए भगवान बोलते हैं ठीक है सब कुछ छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, तुम चिंता मत करो, ये सब पता होगा, लेकिन क्या हुआ हमारे जीवन में जब समय आता है उस समय हमें वो याद आता है कि नहीं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि अवंति ब्राह्मण बोलते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, उनका धन निकल जाता है, उनके सारे जो आजू बाजू के जो सारे जो संबंधी रहते हैं उनको गलत समझते हैं, और उस वक्त वो बोलते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये धन का कारण है जिसकी वजह से मैं दुख प्राप्त कर रहा हूं, क्या मेरे जीवन में दुख का कारण ये व्यक्ति है, क्या दुख के कारण ये देवता लोग है, क्या दुख का कारण ये है। तो बहुत सारा श्लोक है, ये श्लोक स्वयं कृष्ण बता रहे उद्धव जी को, है ना। अभी इतनी चर्चा क्यों चल रही है, क्योंकि हम हमारे जीवन में हर एक प्रश्न का उत्तर किसके बारे में ढूंढते, ये होगा या फिर ये होगा ये होगा, लेकिन वो अवंती ब्राह्मण बोलते हैं कि इस दुख का कारण कौन है, मेरा मन है बोलते हैं। वो बोलते हैं द्विज उवाच, नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणम कारणम आमनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत। वो बता रहे कि ये मेरे लिए कौन कारण है, मन है, जो मन क्या कर रहा है मुझे इस जीवन में सुख और दुख का कारण बता रहे। अभी मन तो बहुत कुछ करेगा, लेकिन इस मन को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, चंचले मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़ तस्याह निग्रह मन वायु रिवसु दुष्करम, ये अर्जुन भी बता रहे। तो कृष्ण बताते हैं असंशय महाभाव, असंशय, उसमें कुछ संशय नहीं है कि मन क्या है, बहुत शक्तिशाली, लेकिन इस मन को कौन नियंत्रित कर सकते हैं, वो है श्री भगवान कृष्ण, है ना। और उन्होंने ये उदाहरण हम देख सकते हैं कि जिस तरह से मन को हमें मारना नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये मन ऐसा नहीं कि नकारार्थी सोचकर अरे मन तो ऐसे ही करता रहेगा, मन को ये नहीं करना चाहिए, या फिर बाहर की दुनिया में सोचते क्या बोलते, अरे आप तो बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द विनर, यू आर सक्सेसफुल, है ना। लेकिन ऐसा सी बोल के हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इतना सब सुनेंगे जैसे, लेकिन बाहर आते हैं तो मन क्या बोलता है, अरे अरे अभी क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, क्या होगा, इतना कंपटीशन है, इतना ये है, उतना समस्या है, ये समस्या। कभी कभी जीवन में सब सब कुछ उपलब्ध रहता है, फिर मन क्या बोलता है, मैं अभी जीवन ही नहीं जी सकता, मेरे मेरा कोई सुनता ही नहीं है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। तो दुख का कारण कौन है, हमारा मन। लेकिन ऐसे मन को क्या करना चाहिए, सवय मन कृष्ण पदारविंद, मतलब क्या करना चाहिए, उस मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। अभी मन तो इतना ये रहता है कि वो सुनेगा नहीं, है ना। जिस तरह से उदाहरण देखते हैं कि कालिया, है ना, कालिया सर्प था, वो क्या कर रहा था, किसी को भी नहीं सुन रहा था, वो बोलता था कि मेरी एरिया में कोई नहीं आना चाहिए, यहां तक विष छोड़ छोड़ के पानी तक जहरीला बन चुका था, और उस जहर की वजह से हवा भी जहरीली बनी थी, तो वहां से कोई पंछी भी आए तो भी वो मरकर गिर जाता था, वहां भी कोई भी जीवंत नहीं है। तो मन का ऐसा रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना है, सब मेरे अनुसार होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मन के क्या होता है, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे ही क्या होता है, वो मन को क्या हो जाता है, बदल हो जाता है, तो मन बोलता है कौन है, है ना। इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारे कर्ण से हमारे हृदय में उतर जाते हैं और मन में जाके डायरेक्ट वो, है ना, क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। लेकिन वो लगने के बाद मन पूरा अविचलित हो जाता है, क्या है, कौन है, कौन है अंदर आया है। तो जैसे मेरे मेरे साथ जैसे मैं देखता हूँ, जैसे जब चालू हो जाता है तो शुरुआत में मन बोलता है क्या है, हरे कृष्ण बोलता है, थोड़ा नींद आ रहा है, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा उधर देखो, है ना। तो उसी तरह से वो कालिया बाहर निकल आता है, कौन है कौन है। लेकिन हमें वो भगवान को क्या करना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए कृपया आप क्या कीजिए, इस मन को दमन कीजिए। मन को मारना नहीं है, मन को क्या करना है, दमन करना है। प्रभुपाद यही बताते तात्पर्य में कि मन बुद्धि तथा अहंकार को हमें शुद्ध करना है, उसको ऐसे नहीं कि नष्ट करना है, वो नष्ट नहीं होने वाले। तो मन को भगवान की सेवा में लगाना है, तो भगवान क्या करेंगे, हंसते हंसते खेलते खेलते क्या करेंगे, मन को नियंत्रण में लाएंगे। लेकिन उस वक्त क्या होता है, जैसे कालिया के मुंह से नाक से कहां कहां से खून निकल आ रहा था, है कि नहीं। भगवान तो कितना सुंदर नृत्य कर रहे थे, ऐसा नहीं कि भगवान बोल रहे अभी इसका गला दबा कर पूरा इसको मैं मार दूंगा, नहीं, बस नाच रहे, सरल नृत्य चल रहा है। लेकिन भक्तिमय कार्य ऐसा ही है, भक्तिमय कार्य करते जाएंगे तो भगवान को पता है कि किसके मन को कैसे शुद्ध करना है ना। वही हम भगवद्गीता में देखते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, है ना, अर्जुन ने बोला कि रथम स्थापय में अच्युत, कहां पे, लेकिन कहां पे, दोनों सेनाओं के बीच में। लेकिन कृष्ण ने अगर वो रथ स्थापन किया रहता कर्ण के सामने या फिर दुर्योधन दुशासन के सामने, तो भगवद्गीता आज हमें सुनने को पता नहीं मिल सकता था कि नहीं। लेकिन भगवान ने बराबर कहां पे स्थापित कर दिया, भीष्म और द्रोण। तो भगवान को पता है किस तरह से मन का शुद्धिकरण करना है, बराबर उसी वीक पॉइंट पर लेकर आएंगे, है ना। तो ये जो है यही, अगर मैं आज भी बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मन शुद्ध है, मेरे भी कुछ वीक पॉइंट्स होंगे, मेरे मन में भी कुछ चलता होगा। तो भगवान बराबर उसी वक्त क्या करेंगे, जब हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि भगवान कृपया क्या कीजिए, मदद कीजिए, कि मन में जो ये आसक्ति है जिसकी वजह से व्यक्ति क्या कर रहा है, चिंता में डूब रहा है, तो कृपया उसको निकालने का प्रयास कीजिए। तो उस वक्त भगवान और उनके क्या करते हैं, भक्त क्या करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, मन हमारा नियंत्रित होता है ना? कोई बोलेगा मैं बुद्धि के द्वारा भगवान को समझ सकता हूँ, है ना, लेकिन बुद्धि अगर कितना भी हो, लेकिन क्या हम भगवान को समझ पाएंगे, या हमारे इस जो लिमिटेड मतलब जिस बहुत ही मर्यादित ऐसे बुद्धि के साथ क्या हम भगवान को समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं जिस तरह से एक मेंढक रहता है, वो कहाँ पे रहता है, कुएं में रहता है, और कुएं में रहकर वो बोलता है, समुन्द्र के बारे में सोच सकता है क्या, वो कितना ही वो सोचेगा तो नहीं समझ पाएगा। उसी तरह से ब्रह्मा जी भी समझ पा रहे थे, क्या वही कृष्ण है, क्या वो बालक, क्या भगवान है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं क्या करता हूं, मैं भगवान को परीक्षण करता हूं, मैं हमारी बुद्धि के साथ, अभी ब्रह्मा जी के बुद्धि के सामने किसी की तुलना भी नहीं हो सकती, उनका शरीर पूरा किससे बना हुआ है, बुद्धि से बना हुआ है। ऐसे ब्रह्मा जी भी भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए, लेकिन देखिए भगवान ने बोला क्या, अरे ब्रह्मा जी आप ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन भगवान का समझने का तरीका देखिए कैसे, असुरों को ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, एक फटका देंगे उसको घुसा देंगे खत्म फिनिश, उसका गला दबा देंगे सिंपल, या फिर ना। लेकिन भक्तों के साथ जब ये करते, देखिए कालिया भी वो पिछले जन्म में भक्त था, है ना, अश्व शिर और वेद शिर जैसे दो ऋषि मुनि थे, ये क्या कर रहे थे कि दूसरे के गुफा में आने का प्रयास कर रहे थे, तो बोले नहीं गुफा में आने का, ये जगह मेरा है, ये तपस्या करने की जगह मेरी है। तो ये पहले से मतलब क्या है, ऋषि मुनि रहते हैं तो थोड़ा सा थोड़ा एकांत लगता है उनको, लेकिन बोलते हैं इधर क्या कर रहे हो, तो दूसरा बोलता है कौवे की तरह बड़बड़ कर रहे, जाओ तुम कौवा बन जाओ, तो बोलते तुम फुसफुस कर रहे हो नाक के जैसा, इधर आने को नहीं बोल रहे हो, तुम क्या बनो, सांप बन जाओ। तो दोनों भी बड़े भक्त बन गए, काक भूषणी बन गए और दूसरे कालिया, है ना। तो ये भक्त थे, तो भगवान ने क्या किया उनको, है ना, दमन नहीं, उनको मारा नहीं, लेकिन क्या कर रहे उनको हंसते खेलते। उसी तरह से ब्रह्मा जी को भी, भगवान के भक्त है ना, तो भगवान बोले ठीक है आपको तो कुछ समझने से पहले ही मैं आपको क्या कर दूंगा, समझाऊंगा कि मैं कौन हूं। तो भगवान ने उसके द्वारा अपने भक्तों को भी प्रसन्न किया और भक्तों का भक्त का शुद्धिकरण भी कर दिया। वो कौन थे, ब्रह्मा जी। देखिए भगवान ने ब्रह्मा जी का जो शुद्धिकरण किया वो सबके सामने पब्लिकली नहीं किया, बहुत प्राइवेटली कर दिया। और उस वक्त किसको पता था, बस ब्रह्मा जी को पता था। और अंत में ये लीला तो बहुत सुंदर है कि ब्रह्म विमोहन लीला जो हमने सुना हुआ है, उस लीला के अंत में वो ब्रह्मा जी आते बोले क्या चल रहा है, कौन है कौन है, ये भगवान है। और जब सभी जगह देखते कि वो गोप कुमार मतलब कौन है, स्वयं भगवान है, चतुर्भुज रूप लेकर वो विष्णु रूप में सारे देवी देवता है उनकी पूजा कर रहे, और हर एक के पास एक एक ब्रह्मा जी है। तो ये ब्रह्मा जी पूरा चकित हो जाते और फिर पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते और अपने उस बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा भगवान को समझने का जो उनका था वो छोड़ देते, और जैसे ही व्रज की धूली उनको शरीर उनके माथे में लग जाता है ना, क्या हो जाते, वो बेसुध हो जाते। और तब जब भगवान का मतलब जिस व्रज धूली लग जाता है और जब देखते हैं तो आगे सामने कौन देखते, भगवान है। और भगवान बोलते मेरे गोप बालक किधर है, गाय किधर है, बहुला ये कर रहे, नाम ले रहे भगवान। तो ब्रह्मा जी एकदम चकित हो जाते, क्या चल के रहे, मतलब ये है भगवान। इतना करने के बाद भी कृष्ण नहीं बोलते बहुत स्ट्रांगली, क्या ब्रह्मा जी आप भी ऐसे कर रहे हैं क्या, नहीं वो बोलते ब्रह्मा जी आप भी चकित हो गए। तो ये है, ये भगवान जो है ये अपने महामाया के द्वारा आकर्षित करते, योग माया के द्वारा आकर्षित करते है ना भक्तों के। लेकिन अगर तो सत ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं अपने इस बुद्धि के द्वारा मैं आपको नहीं समझ सकता हूं, ना बुद्धि ना मन है ना अहंकार। जब वृंदावन में इतनी सब पूजा चल रहा था तो कुछ समस्या नहीं था, सारे व्रजवासी ऐसे नहीं कि इंद्र की पूजा कर रहे थे कि भगवान करके, वो तो अपने कर्तव्य बुद्धि से कर रहे थे कि इंद्र तो हमें क्या करे, बारिश दे रहे। लेकिन जब भगवान ने देखा कि इंद्र को थोड़ा सा अहंकार हो चुका है ना, तो भगवान बोलते आप एक किन की पूजा कर रहे हो बाबा, तो नंदबाबा बोलते नहीं हम तो इंद्र ही करें। तो भगवान क्या करना चाहते, थोड़ा सा है ना उत्तेजित करना चाहते। तो भगवान ने बोला हमारे लिए तो हमारे गोवर्धन है जो हम सबका ख्याल रख रहे हैं, हमारी गायों का ख्याल रख रहे हैं, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो व्रजवासियों ने तो हृदय दिया है, किन के लिए, भगवान के लिए, तो भगवान जो बोलेंगे वो करेंगे, ठीक है। लेकिन उस लीला में हम देखते हैं, लेकिन समस्या किसको हो गया, इंद्र को। इंद्र बोले कौन है ये बालक, ये समझ नहीं पा रहे। तो इंद्र में उस वक्त अहंकार की समस्या हुई थी, वो समझ नहीं पा रहे थे। वही स्वयं भगवान कृष्ण है जिनके लिए वो प्रार्थना किए थे, वो प्रार्थना करने के बाद भगवान प्रकट हुए थे। प्रकट होने के बाद जब भगवान एक्चुअली होने से पहले गर्भ में तभी भी ये सब देवताएं उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने सारे जो असुरों को मारते हुए देखा है भगवान ने, है ना, जो अघासुर मारा था, मारे गए थे। तो अघासुर मारे जाने के बाद तो कितनी बड़ी चर्चा हुई थी, बहुत बड़ी न्यूज थी वो सारी देवी देवताओं में। तो ऐसा था कि कृष्ण के बारे में उनको पता नहीं। लेकिन जैसे अहंकार बीच में आ गया कि मेरी पूजा कैसे रोक सकते, कौन है ये, तो उन्होंने क्या करना चाहा, बस उसके सामने देखा नहीं कि अरे मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, भक्तों को परेशान करने जा रहा हूं, कितना बड़ा दिखे। उन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया, वृंदावन को पानी में है ना बहाने का उन्होंने सोच लिया। संवर्तक बादल लेकर आए हो, और ये संवर्तक बादल पूरे सारे सृष्टि को डुबाते, तो वृंदावन को डुबाने के लिए तो कितना मतलब थोड़ा भी बादल सफिशियंट थे, बहुत छोटा सा जगह है वैसे तो, मतलब देखेंगे तो भौतिक स्तर पे ऐसे वो समझ रहे थे। लेकिन डुबाना इसका मतलब क्या है, मतलब लोग भी जो गाय है बाकी जो सृष्टि है वो क्या हो जाएगा, उनकी हानि हो जाएगी, उनका मृत्यु भी हो सकता है, यहां तक सोच रहे थे कौन, इंद्र। लेकिन भगवान ने क्या किया, उनके भी गर्व का हरण कर दिया, उनके अहंकार को नष्ट कर दिया। और ऐसे इंद्र को भी नष्ट करने का भगवान पब्लिकली नहीं बोलते सबके सामने कि इंद्र क्या कर रहे आप, या फिर नहीं जैसे। तो भगवान ही हमारे मन बुद्धि तथा अहंकार के क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। वो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे मन के लिए शुद्धिकरण के क्या चाहिए, बुद्धि को शुद्धिकरण के लिए क्या चाहिए, अहंकार। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं ये करूंगा या फिर मैं ऐसे करूंगा। लेकिन बहुत आसान तरीका है, वो क्या है, बहुत आसान है, सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे रहिए। भगवान बराबर क्या करेंगे, वो डायरेक्टली नहीं आएंगे लेकिन अपने भक्तों के द्वारा शुद्धिकरण करवाते हैं। तो व्यक्ति को दुखी हो सकता है कि चलो हो रहा है शुद्धिकरण, ऐसे कैसे मेरे साथ हो रहा है। लेकिन वो क्या करना चाहिए, वो जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए, ऐसे बोलते रहना चाहिए, मतलब भक्ति में तीव्रता से लगे रहना चाहिए। हम भक्तों के बीच में रहते तो कुछ भक्त ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ये भक्त ऐसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन समझने का कि वो भक्त क्या कर रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, है ना, उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअली हमारा कोई द्वेष नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले जन्म में मेरे मेरे से कोई गलती हुआ होगा उसके प्रति, तो बस वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे कर्मों का प्रतिक्रिया आ रहा है। लेकिन व्यक्ति अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या कर लेता है, उसके जीवन में वो शुद्धिकरण के साथ सुख का भी अनुभव कर लेता है, वो समझ लेता है अभी कुछ चिंता नहीं। हाँ, अगर मैं अपने मन को भगवान की सेवा में लगाया, जो होगा भगवान देख लेंगे। और यही हुआ था अवंति ब्राह्मण के साथ या फिर बाकी सब भक्तों के साथ, कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें जीवन में बहुत कष्ट आ रहे दिख रहे, लेकिन अंत क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या प्राप्ति किया, उन्होंने क्या प्राप्ति किया, भगवान के प्रति वो श्रद्धा और विश्वास, और वो सभी जगह पे भगवान को देख रहे थे और अंत में भगवान को प्राप्ति की, यही महत्वपूर्ण है। ना कि हम जैसे भौतिक स्तर पे व्यक्ति देखता है कि क्या करता है, बहुत स्ट्रगल करता है ना, कि दिखाने के लिए मैं ऐसा हूं, मैं ये सब कार्य कर रहा हूं, यहां पे देखिए मैं नियंत्रक हूं, लेकिन काल के सामने वो कितने समय तक लगे रहेगा। भूमि वही बोलती है, भूमि गीत अगर हम पढ़ेंगे तो भूमि हंसती है, बोलती है कितने मूर्ख लोग हैं, है ना, ये कितने सारे राजा आए और गए और बोलते ये जगह मेरी थी, दूसरा राजा के बोलता है ये जगह मेरी है, फिर उसके बाद तीसरा राजा आता है वो बोलता है ये जगह मेरी थी, फिर वो राजा आते हैं बोलते हैं मैं ऐसा स्थिति बनाना चाहता हूं, ये चल रहा है भूमि गीत में ऐसा लिखा है, क्यों बोलते हैं कि इतने सारे राजा आके बोलते हैं मेरे सारे मंत्री मेरा सुनना चाहिए, मेरे सारे लोग सुनना चाहिए, और मतलब निष्कंटक होना चाहिए, मेरा राज्य कैसे होना चाहिए, निष्कंटक। लेकिन उसके लिए इतना सब प्रयास करता है, लेकिन अंत में उसको सब छोड़ के चला जाता है। तो व्यक्ति इस अहंकार के कारण क्या करता है, पूरा मेरा 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 कर कर क्या करता है, जीवन में दुख ही भोगता रहता है ना। तो इसी के लिए हम देखते हैं इस दुनिया में जो लोग हैं बहुत सारे आकर्षित होते हैं किससे, आए आए आए, मतलब मैं और मेरा, अहम ममेती, है ना, लगता है कंपनी को भी पता चल गया। इसी के लिए पहले मैक प्लेयर बोलते थे, मतलब एप्पल कंपनी का जो प्लेयर आता था उसको मैक प्लेयर बोलते थे, लेकिन उन्होंने जब नाम चेंज कर दिया आई प्लेयर, मतलब आई, है ना, फिर आईफोन और आई, मतलब सब आई 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 चालू हो गए ना, तो लोग बोले हाँ उससे कनेक्ट करते आए, है ना। तो हमारे भक्त बहुत होशियार है, एक दिन एक भक्त बोल रहे थे, बोले हमारे इधर आए है चाइनीज वाले मी निकाल रहे, बोले यम आए मी, बोले कुछ भी हो अहंकार के पीछे लगे, बोले चाइनीज नहीं वो कंपनी, वो मराठी कंपनी, बोले मी आए मी सब मी फोन मी ये सब यम आए कंपनी के। तो यही है ना कि, लेकिन समस्या ये है कि जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता तब तक मन बोलता रहता है मेरे इसमें कुछ बाधा नहीं होनी चाहिए, जैसे हो जाएगा नहीं चलेगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में इसके लिए बता रहे कि ये करना है तो क्या करो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवती तत्वतः, तो मेरे बारे में क्या करो, पहले तत्वतः जान लो। अभी तत्वतः जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे श्रवण कीर्तन करते वक्त भी क्या होता है, फिर भी है ना थोड़ा बहुत होता रहता है ऊपर नीचे। तो ऐसे ही एक मठ में भी ऐसी समस्या चल रहा था, है ना, व्यास तीर्थ जी के मठ में, उनके आश्रम में कौन आए थे, कनकदास आए थे। अभी कनकदास अगर हम देखेंगे तो जैसे मध्व संप्रदाय में वहां पे एक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है कि कोई भी जो एक भक्ति कर रहा है, ऐसा नहीं कि भक्ति करने के लिए कोई समस्या है, लेकिन कोई भी अगर वर्णाश्रम सिस्टम में अंदर आ रहा है तो ब्राह्मण समाज से आना चाहिए, फिर ब्राह्मण जन्म से होना चाहिए, उसके बारे में बहुत क्या होता था, स्ट्रांग रहते थे। तो व्यास तीर्थ के मठ में बहुत सब ब्राह्मण ही थे, लेकिन उनके आश्रम में कौन आए थे, कनकदास। ऐसे कनकदास तो भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे, जो श्री वेंकट निवास, मतलब कौन, जो बालाजी भगवान है, उनकी विशेष कृपा पात्र, उनके आशीर्वाद से ही जन्मे हुए ऐसे भक्त है, ऐसे कनकदास क्या अरे व्यासतीर्थ जी का शरण लेते हैं, तो व्यासतीर्थ बहुत आकर्षित हो जाते, बोलते हैं देखो भक्ति कितना सरलता से कर रहे हैं कनकदास। तो बाकी के सारे भक्त बोलते रहते हैं क्या है ये कनक कौन है, एक क्षुद्र है और उसके सामने है ना हम इतने ब्राह्मण हैं, इतने सारे वेद पढ़ रहे, पारंगत है, इतने समय से हमारे गुरु महाराज के साथ है, लेकिन हमारे आचार्य को इन्होंने क्या मति भ्रमित कर दिया। तो था थोड़ा डिस्टर्बेंस। तो ये जब पता चला तो व्यासतीर्थ ने मतलब एक बार ऐसे ही बुलाया था सबको। तो उस चर्चा चल रही थी तो वहां पे एक शेषाचार्य करके एक ये है, तो वो भक्त वो बता रहे थे, बोले वो व्यासतीर्थ जी को बता रहे थे गुरु महाराज देखिए ये जो है पूर्णाचार्य, ये पूर्ण है ना, ये पूर्णाचार्य इन्होंने क्या किया है तीनों वेदों को क्या किया है पारंगत किया है, सॉरी चार वेदों को, और ये चतुर्वेदी बन गए, इतना सारा वेदों का पारंगत करने के बाद अभी भगवान को कितना प्रसन्न होंगे, तो वैकुंठ में जाएंगे ही, उनको जो वैकुंठ के भगवान है भगवान उन्हें आपके धाम में लेकर जाएंगे। तो व्यासतीर्थ तो बोलते हैं मुझे तो वो बोलते हैं कनकदास तुम्हें क्या लगता है, कनकदास बोलते हैं बोले कि आप सब महान लोग हैं, वेदों में पारंगत होना कोई सामान्य चीज नहीं है, संस्कृत का ज्ञान होना, वेदों में पारंगत होना, लेकिन बोलते हैं भगवान को वैकुंठ में चतुर्वेदी नहीं चाहिए। उससे बोले हाँ बोले पहले तो एक कनकदास बीच बीच में, अभी डायरेक्ट हमारे गुरु महाराज क्या कर रहे कनकदास को पूछ रहे कि कौन जाएगा, और एक तो शिष्याचार्य बोलते हैं ओके कनकदास तो लगता है आप अथॉरिटी है, लगता है ना वैकुंठ लेके जाने के लिए आप प्रतिनिधि हो, तो आप बताइए। अरे ये भीमाचार्य इन्होंने कितने सारे तपस्या करते, उन्होंने क्या किया था नदी के किनारे रहकर इतना तपस्या किया, और जब तपस्या करते तो चार दिन में एक बार खाते, तो इन्होंने इतना तपस्या किया है ये भगवत धाम जाएंगे, है ना क्या लगता है। तो वो बोलते इनकी जैसा तपस्या के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, बोले मैं तो बहुत भोगी हूं, कनकदास बोलते हैं, लेकिन बोलते कितने सारे योगी कितने सारे जन्मों से कितनी सारी तपस्या से हवा और पानी लेकर कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, भगवान को तो बस सरल जो भक्ति है उसके द्वारा ही जीता जा सकता है, ना कि अपने योग तपस्या और इससे। तो फिर सब गुस्सा हो जाते हैं क्या चल क्या रहे, तो सब जन बोलते अरे ठीक है ये कोई नहीं जा पा रहा है, अरे शेषाचार्य तो ऑलराउंडर है, वो तो अच्छे पुजारी है, भगवान की इतनी अच्छी अर्चना करते हैं, इतने अच्छे वेदों को जानते हैं, सारे ज्ञान उनको पता है, उन्होंने गुरु को प्रसन्न किया हुआ है और वो तपस्या भी करते हैं, तो अभी ये तो जाएंगे ना। तो कनकदास बोलते हैं कितना भी कोई वेद में पारंगत ना होने दो, किसके भी मन में अगर वो अगर उसके मन में अहंकार हो ये हो तो नहीं जा पाएगा। तो सब बोलते तो कौन जाएगा, तुम जाओगे आप जाओगे, तो बोलते अरे हमारे गुरु है व्यासतीर्थ वो जाएंगे। तो व्यासतीर्थ बोलते कनकदास मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, बोलते कनकदास को बोलते अरे ये नहीं जा पा रहे ये नहीं जाएंगे, तो बोलते क्या मैं जाऊंगा भगवत धाम, तो कनकदास बोलते हैं अरे आप तो हमारे गुरु है, आप तो मध्व संप्रदाय में आने वाले शिरोमणि हो, आप सारे गुरु परंपरा को इतने अच्छे से मार्गदर्शन करने वाले, हम जैसे तुच्छ व्यक्ति को आपने है ना शरण दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे कि मैं अगर भगवत धाम जा पाऊंगा कि नहीं वैकुंठ जाऊंगा कि नहीं, तो बोलते कि आप वैकुंठ नहीं जाओगे। सब गुस्सा हो जाते हैं, बोले ये तो महा अनर्थ क्या हो गया, बोले यही सुनना बाकी था, अरे इसको फेंक दो आश्रम के बाहर फेंक दो कैसा है, तो बोलते अरे शांत शांत, बोलते शांत हो, बोलते वो बोलते कनक मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, क्या आप भगवत धाम जाओगे क्या, आप वैकुंठ जाएंगे? तो बोलते कि मतलब उस तरह से प्रश्न है कि क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा क्या, ऐसी तरह से। तो कनकदास बोलते हैं मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूं, लेकिन ये प्रश्न के उत्तर में बोलता हूं कि अगर मैं जा सकता हूं तो मैं जाऊंगा। तो बोलते हैं पापी, गुरु को बोलते हो वो नहीं जाएंगे और खुद जा रहे। अरे ये हम बोल रहे थे कब से, ये आपका शिष्य नहीं है, देखो देखो अभी तो प्रूव हो गया। व्यास तो बोलते शांत हो जाओ। बोले ऐसे क्यों बोल रहे? तो कनकदास बोलते हैं, बोलते मैं उत्तर के बोल रहा हूं कि अगर मैं जाऊंगा क्या। तो बोलते मैं का मतलब आए, वो जो अहंकार है, ये अहंकार कभी भी वैकुंठ नहीं जा सकता, ये कभी नहीं जाएगा वैकुंठ। लेकिन इसके उस उत्तर में बोलते अगर मैं जा सकता हूं, मतलब ये अहंकार, ये फॉल्स ईगो, ये अहंकार, खुद को खार समझना, मैं जाऊं, ये जब अगर जाएगा, अहंकार जाना इतना आसान है, लेकिन अगर ये जाएगा तो फिर मैं भगवत धाम जाऊंगा, है ना। तो ये सुनने के बाद सब शांत हो जाते। तो अभी ये तो मैं एक देख रहा था, मुझे बहुत तो विशेष लगा था, वो बहुत सुंदर है कि इफ आई कैन गो आई मे गो, है ना। अगर वो अहंकार जाना है तो ये मन बुद्धि अहंकार, है ना, ये जितना बोलना सुनना, मैं बोल रहा हूँ सॉरी, ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में जब होता है हमारे जीवन में, जब हमें सच में वो, है ना, जब ऑपरेशन होना चालू हो जाता है, तब जो आवाज आता है तो उसको बस सहन करते रहो, जो भी हो रहा है आओ, लेकिन वो करने के लिए प्लीज अलाउ द डिवोटीज, मतलब वो भक्तों को करने के लिए या भगवान को करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। और जैसे होने के बाद ना, कुछ समय के बाद जब ठीक हो जाते तो लगता है वाह थैंक यू, अरे इतना आसान था, क्यों मैं इतने 4-5 साल उसको सहन कर रहा था, है ना। समस्या ऐसे जैसे मेरे जीवन में देख रहा था, एक बार ऑपरेशन होने के बाद पहले बहुत दुख हो रहा था, ऑपरेशन के समय तो बहुत ही, मैं क्यों कर रहा हूँ ऑपरेशन, लेकिन जैसे अभी जीवन में देखता हूँ, अरे अच्छा हो गया किया, अभी तो कम से कम अभी का जो जीवन है उसमें क्या हूँ, थोड़ा सा शांति से जीवन जी सकते। उसी तरह से हमारे मन बुद्धि अहंकार, भगवान देखिए ये उदाहरण जो बता रहा था मैं कि भगवान ऐसा नहीं पूरा मार पीट कर इतना तो हमारा शुद्धिकरण नहीं करने वाले, वो पब्लिक प्राइवेटली करेंगे, तो कोई समस्या नहीं होने वाला, कि पेपर में आने वाला नहीं है ये प्रभु जी के साथ ऐसा हो गया, प्रभु जी ऐसा हो गया, लेकिन हमें ऐसा लगता है अभी क्या होगा, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई किसी को, क्योंकि ये भौतिक दुनिया है, यहाँ पे किसी को ज्यादा किसी को, लेकिन भगवान और भक्त क्या करते हैं, शुद्ध भक्त हमसे बहुत प्रार्थना करते। इसी के लिए प्रभुपाद अंत में बहुत सुंदरता से बोलते हैं स्टेप वाइज, मैं थोड़ा समय लूंगा आपका, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य युक्त एवं आत्मा न मत परायणः। ये भगवान श्लोक दो बार बताते भगवदगीता में, और गौर गोविंद महाराज को पूछ रहे थे कि भगवदगीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है, तो गौर गोविंद महाराज हमेशा ये श्लोक को बताते थे कि मन मना भव मद भक्तो, क्योंकि स्टेप वाइज जाता है। तो भगवान बोलते मेरे अपने मन को मेरी मुझमें लगाओ। अभी बहुत बार कुछ लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन जैसे कोई स्टूडेंट रहता है, स्टडी कर रहा है, ये कर रहा है, तो भी मन लगाता है ना, लेकिन मन क्या करता है, मार्कर लगाता है, उसको स्टडी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मन लगाता है तो उसको सक्सेस मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे शुरुआत चल रहा है, भगवान बोल रहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, कम से कम क्या करो, मन लगाओ। लेकिन उसके आगे का स्टेज होता है मद भक्तो, भव मद भक्तो, नहीं अभी कैसे करो, लेकिन मेरा भक्त बनो, प्रेम से लगाओ, है ना। तो मन का हो गया, और भगवान बताते कि ये करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, बुद्धि योगो जाहते, मतलब ये जो भी करना है भक्ति, उसके लिए क्या चाहिए, आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। इसके लिए भगवान भक्तियों को भी क्या बोलते हैं, बुद्धि योग भी बोलते हैं। और मध्याजी माम नमस्कुरु, नमस्कुरु मतलब भगवान बोलते मेरी अर्चना करो, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होता है, नमस्कुरु, नमस्कार। नमस्कार क्यों जाता है, उसका एक ही कारण है, वो क्या है, अपने अहंकार को जस्ट छोड़ना है। मंदिर में हम देखते हैं कि छोटे बच्चे आते तो स्टार्ट से एंड तक नमस्कार करते बैठते हैं एक दूसरे को देखकर, लेकिन उसके साथ आने वाले जो रहेंगे वैसे हाथ बांधकर मतलब रहते, क्यों, क्योंकि अहंकार रहता है ना, वो बोलता है मैं क्यों झुकूंगा इसके सामने, मैं इनके सामने, तो यह अहंकार हमें छोड़ना पड़ेगा, एक तो भगवान के सामने और भक्तों के सामने झुकना है। फिर ऐसा करेंगे तो और युक्त हो जाएंगे आत्मानं मत्परायणः, तो हम और उसके साथ भगवान के साथ पारायण होंगे तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं और ऐसे भगवान हमारे लिए इतने सारे आचार्यों को भेजा है और इतने सारे आचार्य क्या करते हैं हमारे प्रगति के लिए इतने सारे ग्रंथ, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने इतने ग्रंथ दिए और एक ग्रंथ वितरण कर रहे हैं हम, और इस ग्रंथ का जब वितरण करते हैं तो पढ़ेगा 100% कोई ना कोई तो पढ़ेगा। और जब पढ़कर पूछकर आते कि प्रभु जी भगवद्गीता सुनना है समझना है, और जब उनके जीवन में जब बदल आता है तो वही उनको क्या करेगा इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालेगा। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और ऐसा नहीं कि मैं हमारे जीवन में मैं भी कुछ शुद्ध हूँ, लेकिन यही प्रार्थना है कि अगर हम भक्तों के संग में लगे रहेंगे और भक्तों की प्रार्थना रहेंगे तो हम अपने भक्तों के लिए और अपने गुरुओं के और प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद की ग्रंथ रहा श्रीमद्भागवतम की।